प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले नई दिल्ली में नीति आयोग के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र और कई जाने माने अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित थे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ ही कई ऐतिहासिक पहल देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी राजनीतिक दलों से संसद और विधानसभाओं में बिना बाधा के सुचारू रूप से कामकाज चलाने के लिए परस्पर सहयोग का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति आज मुंबई में विधानसभा में महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। जनता की समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष सहयोगपूर्ण रवैया अपनाए। श्री धनखड़ ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अनुशासन का पालन करें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का संदेश इस मायने में स्पष्ट होना चाहिए कि वे सभी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच नई ऊर्जा और नए संसाधनों के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉ जयशंकर आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग दीर्घकालिक लक्ष्य है। समय के साथ इनका महत्व और बढ़ गया है। ऐसे में बिम्स्टेक जैसे संगठन को बड़ी आकांक्षाएं रखनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच विदेश मंत्री ने आज शाम बिम्स्टेक सम्मेलन के अवसर पर थाईलैंड और म्यांमा सहित अपने कुछ अन्य पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि साइबर अपराधों, मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना तीनों देशों की साझा प्राथमिकता है और वे इसमें सहयोग जारी रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत समावेशी और सतत विकास के ब्रिक्स के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का विषय था मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए गर्भधारण का उचित समय और अंतराल। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि परिवार नियोजन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक नीना सिंह ने आज मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ ने इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि इससे सभी बलों को फायदा होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल से सोमवार तक कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अत्यधिक तेज वर्षा की संभावना है। विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स का सेमीफाइनल मुकाबला इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने जीत लिया है। जैस्मिन पाओलिनी ने क्रोशिया की डोना वेकिव को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।